नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। G20 के पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में 1 अप्रैल को शुरू होगी। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि इस बैठक के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। G20 देशों के प्रतिनिधि सिलीगुड़ी स्थित एक रिजॉर्ट में रुकेंगे। इस बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधि, अतिथि देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यटन क्षेत्र की 5 प्राथमिकताओं पर गहन चर्चा करेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि पश्चिम बंगाल की कला और संस्कृति देख सकेंगे। पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक गुजरात के कच्छ में फरवरी में हुई थी। उस बैठक में पर्यटन क्षेत्र के लिए 5 प्राथमिकताएं हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल पर्यटन, MSME और गंतव्य प्रबंधन चिन्हित की गई थी। इस मौके पर पर्यटन मंत्रालय सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक माध्यम के तौर पर साहसिक पर्यटन कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। इसके अलावा घरेलू पर्यटन उद्योग के लिए भी 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार में सकारात्मक रुख और अमेरिकी डॉलर में कमजोरी के बीच रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में 9 पैसे चढ़कर 82.31 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 82.36 पर खुला, फिर बढ़त के साथ 82.31 के स्तर पर आ गया, जो पिछले कारोबारी दिवस के मुकाबले 9 पैसे की बढ़त को दर्शाता है। रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82.40 के स्तर पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.11% गिरकर 103 पर आ गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.04% की बढ़त के साथ $75.02 प्रति बैरल के भाव पर था। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को शुद्ध रूप से 1,720.44 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। अमेरिकी बाजारों में सकारात्मक रुख और रिलायंस इंडस्ट्रीज तथा HDFC बैंक जैसे बड़े शेयरों में लिवाली के चलते घरेलू शेयर बाजार में तेजी रही और सोमवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ खुले। इस दौरान 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 137.55 अंक बढ़कर 57,664.65 अंक पर पहुंच गया। वहीं NSE निफ्टी 46.05 अंक चढ़कर 16,991.10 अंक पर था। सेंसेक्स में पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, टेक महिंद्रा और HDFC बैंक लाभ में कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक तथा ICICI बैंक नुकसान में थे। एशियाई बाजारों में सियोल, हांगकांग और शंघाई के बाजार नुकसान में कारोबार कर रहे थे, जबकि जापान के बाजार लाभ में थे। अमेरिकी बाजार भी शुक्रवार को अच्छे लाभ के साथ बंद हुए थे। पिछले कारोबारी सत्र में शुक्रवार को 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 398.18 अंक यानी 0.69% की गिरावट के साथ 57,527.10 अंक पर बंद हुआ था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 131.85 अंक यानी 0.77% की गिरावट के साथ 17,000 अंक स्तर के नीचे आ गया और ये 16,945.05 अंक पर बंद हुआ था। इस बीच वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.09% की गिरावट के साथ $74.92 प्रति बैरल पर था। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 1,720.44 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। निजी क्षेत्र की करीब 67% कंपनियों के पास कोई समुचित जोखिम प्रबंधन व्यवस्था नहीं है और 52% से अधिक कंपनियां अब भी औपचारिक जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया से लैस नहीं है। एक अध्ययन रिपोर्ट में ये आकलन पेश किया गया है। जोखिम सलाहकार फर्म MGCA ग्लोबल ने अपनी रिपोर्ट में निजी कंपनियों के पास समुचित जोखिम प्रबंधन व्यवस्था नहीं होने की बात कही है। इस सर्वेक्षण में शामिल 50% से अधिक कंपनियों का राजस्व आधार 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। MGCA ग्लोबल ने एक विज्ञप्ति में कहा कि ये सर्वेक्षण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत वरिष्ठ प्रबंधन एवं निदेशक स्तर के 60,000 पेशेवरों के बीच कराया गया था। इससे पता चला कि करीब 67% निजी स्वामित्व वाली कंपनियों और 38% सूचीबद्ध के पास जोखिम प्रबंधन की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा कंपनियों के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक ना होने से अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने का जोखिम भी बना रहता है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि निजी कंपनियों के करीब 45% प्रतिभागियों के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों का अनुपात 1/3 से भी कम है। इससे अपने खास लोगों को फायदा पहुंचाने और निर्णय निर्माण में वस्तुनिष्ठता पर असर पड़ने की आशंका बनी रहती है। महिला उद्यमियों के स्टार्टअप का अनुकूल माहौल देने के लिए गठित इनक्यूबेटर वी हब ने ऑस्ट्रेलिया के डिजिटल विपणन एजेंसी साइबर वेस्ट साइन के साथ रविवार को एक समझौता किया। वी हब ने एक विज्ञप्ति में कहा, इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों कंपनियों के विशेषज्ञों का उनके क्षेत्र में सदुपयोग करके ऑस्ट्रेलिया स्टार्टअप को तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में प्रवेश करने व भारतीय स्टार्टअप को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में प्रवेश करने में मदद करना है। इस समझौते के तहत वी हब और साइबर वेस्ट साइन स्टार्टअप को बाजार की स्थिति, उद्योग के नेटवर्क और संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित कराएंगे ताकि वो नए बाजार में आने वाली चुनौतियों का अनुमान लगा सकें। वी हब के मुख्य कार्यपालक अधिकारी दीप्ति रवुला ने कहा, ये करार इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि हम दोनों देशों में स्टार्टअप के लिए सार्थक अवसर पैदा करने में अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी तरह कर सकते हैं। साइबर वेस्ट साइन के सीईओ स्टीफन डॉसन ने कहा, हम वी हब के साथ साझेदारी करने और भारतीय बाजार में ऑस्ट्रेलिया स्टार्टअप को सफल होने में उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए उत्साहित हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए iJanasatta.com पर नमस्कार।